जगत्कालय अस्य उसका अनुशयनम् पुरुष अवतारी महाविष्णु का योग निद्रा में लेटना आत्मनः जीवात्माओं का सह साथ शक्ति भी शक्तियों के साथ मुक्ति मुक्ति हित्वा त्याग कर अन्यथा नहीं तो रूपम रूप स्वरूपेण स्वरूप में व्यवस्थिति स्थाई पद। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। अपनी जीवन संबंधी उपाधियों सहित जीवात्मा का शयन करने वाले महाविष्णु में लीन होना ही निरोध है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, जीवात्माएं दो प्रकार की होती हैं। उनमें से अधिकांश नित्य मुक्त और कुछ नित्यबद्ध होती हैं। नित्यबद्ध जीवों में प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने की मानसिकता का विकास हो सकता है, अतः उन्हें दो प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक विश्व का प्राकट्य होता है। पहली सुविधा के अनुसार बद्ध जीव स्वेच्छा से विश्व पर अधिकार जमा सकता है और दूसरी सुविधा के अनुसार वह भगवान के धाम को वापस जा सकता है। अतः विश्व के लय होने पर अधिकांश बद्ध जीव योग निद्रा में लेटे हुए भगवान महाविष्णु में लीन हो जाते हैं, जिससे वे अगली सृष्टि में पुनः जन्म लें। किंतु कुछ बद्ध जीव वैदिक साहित्य के दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हुए भगवान के धाम को वापस जाने में समर्थ होते हैं और अपने बद्ध स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर आध्यात्मिक तथा आदि शरीर प्राप्त करते हैं। ईश्वर से अपने संबंधों को भूलने से जीवात्माओं को भौतिक बद्ध शरीर प्राप्त होते हैं और विश्व के प्राकट्य होने पर बद्ध जीवों को शास्त्रों के सहायता से, जिन्हें भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों के समय कृपावश संग्रह किया है, अपनी मूल स्थिति को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण या पठन से बद्ध अवस्था में होते हुए भी जीव को मुक्त होने में सहायता मिलती है। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य श्री भगवान की भक्ति करना है और जैसे ही इस पद पर कोई स्थित होता है, उसे तुरंत ही बद्ध जीवन से छुटकारा मिल जाता है। भौतिक स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का कारण मात्र बद्ध जीव की अज्ञानता है और ज्यों ही वह भगवान की भक्ति में स्थित होता है, वह बद्ध अवस्था से मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। यह भक्ति परमेश्वर के लिए दिव्य आकर्षण होती है, क्योंकि परमेश्वर समस्त भावों रसों के स्रोत हैं। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी भाव के आनंद का इच्छुक होता है, किंतु वह समस्त आकर्षण के परम स्रोत को नहीं जानता। रसो वैसह रसम ह्योवम लब्ध्वानंदी भवन्ति। वैदिक स्तोत्र समस्त आनंद के परम स्रोत की सूचना देते हैं। समस्त आनंद का अजृत स्रोत भगवान है और जो भाग्यशाली मनुष्य श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों के द्वारा इस संदेश को प्राप्त करने में समर्थ है, वह सदा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। इस अध्याय का शीर्षक है भगवान भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। भौतिकतावादी मनुष्य को इस अध्याय का शीर्षक एक उसके मन में प्रश्न उठाएगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर भागवत से कैसे मिल सकते हैं। इस अध्याय का शीर्षक क्या है? भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। अब प्रश्नों की श्रृंखला यदि देखें तो इस भौतिक संसार में कितने विभिन्न प्रकार के प्रश्न लोग पूछ रहे हैं और कोई ठीक से बता नहीं सकता कि कितने प्रकार के प्रश्न हैं लोगों के। अब इस भौतिक संसार में एक प्रश्न है जिसके अलग अलग रूप हैं। प्रश्न एक ही है, कैसे मैं भगवान बनूं? ये प्रश्न है और ये मुख्य प्रश्न के अलग अलग, जैसे भगवान श्री कृष्ण मुख्य अवतार हैं या अवतारी, और उनसे अलग अलग अंश कला ये सब उत्पन्न होते हैं, तो उसी प्रकार से इस भौतिक संसार का मुख्य प्रश्न हम बद्ध जीवों का क्या है? मैं कैसे भगवान बन सकता हूं? और फिर इसके अंश अवतार, इस प्रश्न के अंश अवतार कौन कौन से प्रश्न हैं? जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा है कि मैं डॉक्टर कैसे बनूं, मैं इंजीनियर कैसे बनूं, मैं ये कैसे बनूं, मैं पैसे कैसे कमाऊं, घर कहां खरीदूं, इंद्रिय भोग के साधन कैसे इकट्ठा करूं, ये सारे इस एक मुख्य प्रश्न के विस्तारित प्रश्न है। कौन सा मुख्य प्रश्न? मैं भगवान कैसे बनूं? जैसे कि इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हम लोग सब इस भौतिक संसार में आए हैं एकमेव कारण भगवान बनने के लिए, क्योंकि आध्यात्मिक संसार में तो भगवान है और वहां पर जब हमने ये प्रश्न पूछा तो वहां पर उत्तर नहीं मिला। उत्तर ये मिला, भगवान ने कहा यहां पे कोई स्कोप नहीं है, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी फॉर गॉड्स, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर पोस्ट भगवान ने ले रखी है। और वो कोई इस भौतिक संसार के नेता की पोस्ट नहीं कि 5 साल बाद बदलते रहते हैं। तो इसलिए अब देखिए यहां पर ये अध्याय प्रारंभ हुआ है जिसमें सुखदेव गोस्वामी अत्र सर्ग विसर्ग, इस भौतिक संसार को बनाने के लिए जो अलग अलग तत्व इस्तेमाल किए गए इन सब का विवरण दे रहे हैं। ये इतना बड़ा भौतिक संसार, हालांकि भगवान की तुलना में कुछ भी नहीं है, परंतु हमारी तुलना में कितना विशाल है ये भौतिक संसार, कितने बड़े बड़े साम्राज्य यहां पर हम लोगों ने खड़े कर रखे हैं केवल इस एक प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए, मैं भगवान कैसे बन सकता। कितने बड़े बड़े देश हैं, उसके अंदर बड़े बड़े प्रांत हैं। एक नासिक शहर को लीजिए, क्या कुछ नहीं चल रहा, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई नहा रहा है, कोई पहन रहा है, ये सारे इतने सारे कार्य जो हो रहे हैं इनके पीछे उद्देश्य क्या है। बद्ध जीव का एकमात्र ही उद्देश्य, एक प्रोजेक्ट, और सभी का प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कि केवल जिनके पास कुछ गुण हैं वही इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं। कौन सा प्रोजेक्ट? गॉड्स प्रोजेक्ट, भगवान बनने का प्रोजेक्ट। एक चींटी जो रेंग रही है धरती पर, उसका भी वही प्रोजेक्ट है। और किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उसका भी वही प्रोजेक्ट, भगवान बनने का प्रोजेक्ट। इसलिए तीसरे स्कंद में ये प्रसंग है जब महात्मा विदुर हरिद्वार की ओर निकलते हैं और वो मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं। अब ये द्वापर युग की बात है, महात्मा विदुर मैत्रेय ऋषि से मिलते ही क्या कहते हैं। यहां पर एक महात्मा दूसरे महात्मा से मिल रहे हैं, तो ये दोनों भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त, इनकी चर्चा क्या है। महात्मा विदुर कहते हैं मैत्रेय ऋषि से, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य अनुग्रहाये वही चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। महात्मा विदुर इस सुंदर श्लोक के द्वारा कहते हैं, सबसे पहले हम बद्ध जीव जो हैं उनकी अवस्था बता रहे हैं, जैसे कि यहां पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने कहा हमारी अवस्था, तो महात्मा विदुर भी उसी प्रकार से हम बद्ध जीवात्माओं की अवस्था बताते हैं। जनस्य अर्थात हम सब जन, जनस्य कृष्णात विमुख, हम लोग यहां पर हैं इसका एकमात्र कारण है भगवान श्री कृष्ण के विमुख हम हुए। विमुख आप जानते हैं, भगवान की तरफ हमने अपना मुख कर रखा था आध्यात्मिक संसार में, अब विमुख उल्टा मुख हमने कर लिया। जैसे कि भगवत दर्शन पत्रिका में आप पढ़ोगे ऊपर लिखा रहता है, कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहां कृष्ण ताहार नहीं मायार अधिकार। अर्थात जहां पर कृष्ण है वहां पर अंधकार नहीं। इसका उल्टा क्या हुआ? जहां पर कृष्ण नहीं वहां पर अंधकार। तो कोई ऐसी जगह है जहां पर कृष्ण नहीं है? अब ये भी कहा जाता है कि कृष्ण सर्वव्यापी है, तो ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं कि यदि कृष्ण सर्वव्यापी है तो फिर अंधकार कैसे हो सकता है कहीं पर भी? क्योंकि यहां पर कहा गया है कृष्ण सूर्य सम और माया अंधकार, तो कैसे समझा जाए इसे? जब हम कृष्ण से विमुख होते हैं तो ऐसा नहीं कि अंधकार छा जाता है, हमें अंधकार दिखता है क्योंकि हमें कृष्ण नहीं दिख रहे। एक साधारण से उदाहरण से श्रील प्रभुपाद इसे समझाते हैं, कोई बहुत जटिल समस्या नहीं है ये, इसे समझना। जैसे अब सूर्य उगा हुआ है, बाहर दिन की रोशनी है, यहां पर भी सूर्य की रोशनी आ रही है। यदि यहां पर हमें अंधकार पैदा करना है तो क्या करना है? आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करते ही इतना बड़ा जो सूर्य इतने समय से उगा हुआ, कितनी शक्ति है सूर्य की रोशनी में, कितनी दूर से सूर्य की किरणें देखो यहां तक आ रही हैं। इतना शक्तिशाली सूर्य एक सेकंड में, इस सूर्य का अस्तित्व शून्य हो सकता है, कैसे? आंखें बंद करने से। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम को हम छोड़ सकते हैं विमुख होने के कारण। ये विमुख होने की दशा क्या है? आंख बंद करने की दशा। आंख बंद करते ही अंधकार। अब देखिए, आंख बंद करते ही होता क्या है? जैसे अभी हम लोग सब आंख खुली रखे हैं, है ना? तो आंख बंद करते ही हमें दिखाई कुछ नहीं देगा, अंधकार कुछ नहीं दिखाई देगा, सब अंधेरा। तो अंधेरे में सबसे पहला भाव हृदय में क्या उत्पन्न होता है? भय। अंधेरे में तुरंत भय उत्पन्न होता है, और अंधेरे के वजह से अज्ञान। जैसे कि अभी हम लोग सब इस टेंपल हॉल में बैठे हैं, आंखों के वजह से आप के अंदर ये ज्ञान है कि मैं कहां पर बैठा हूं, और आंखों के वजह से आपके अंदर ये ज्ञान आ रहा है कि आप कौन सी दिशा में बैठे हैं। ये टेबल यहां पर है, वो बोर्ड वहां पर है, ये माइक यहां पर है, ये सब का ज्ञान आपको कहां से मिल रहा है? आंखों से। क्या आंखें काफी हैं इस ज्ञान को आपको दिलाने के लिए? नहीं। यदि यहां पर सूर्य की रोशनी नहीं होती तो ये आंखें भी ये सब कुछ नहीं देख पाती। तो आंखें कैसे देख पाती हैं? सूर्य की रोशनी की वजह से, या लाइट होना चाहिए तभी तो आंखें देख पाएगी। घुप अंधेरा और आपकी आंखें, चाहे कितना भी अच्छा आपका विजन हो 6x6, चाहे आपने कॉन्टैक्ट लेंस डाल रखे हो या बड़ी बड़ी बड़े बड़े चश्मे डाल रखे हो, कुछ भी, घुप अंधेरा कुछ नहीं आंखें देख सकती। तो ये आंखों को जो ज्ञान मिल रहा है, ये एक तो खुले रहने की वजह से मिल रहा है और सूर्य की रोशनी की वजह से मिल रहा है। तो आंखें बंद होने की दशा क्या है? एक तो भय और दूसरा अज्ञान। आंखें बंद करते ही यदि पूछा जाए, यदि जैसे कि आप लोग इस तरफ देख रहे हो, तो मैं यदि आपसे पूछूं कि बताओ मृदंग कहां रखा हुआ है, तो जब तक आप पीछे नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि मृदंग कहां रखा हुआ। एक यहां रखा हुआ है क्योंकि मैं देख रहा हूं इसको, परंतु मेरे पीछे क्या है वो मुझे नहीं अभी दिखाई दे रहा, कि वहां डीटी रूम में क्या हो रहा है नहीं दिखाई दे रहा, आश्रम में कौन सो रहा है नहीं दिखाई दे रहा, प्रसादम हॉल में कौन खा रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो तीन बिल्डिंगों में कौन सो रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अंधकार के वजह से भय और अज्ञान। और हमारी दशा क्या है? जनस्य कृष्णात विमुखस्य दैवात। यहां पर हम जो आए भगवान से विमुख हुए, अर्थात आंख बंद की, अंधकार में आए, यहां पर आते ही भयभीत। यहां पर जीव जो भी इतना उथल पुथल कर रहा है, इतना भागम दौड़ जो जीव की चल रही है, ये भय के कारण कि मुझे ये इंद्रिय भोग कब मिलेगा और जो मिला हुआ है छूट न जाए। भय और फिर अज्ञान, ढूंढ रहा है कि कौन सी ऐसी जगह, कौन सी ऐसी स्थिति या कौन सी ऐसी वस्तु जो मुझे भगवान बना दे। तो महात्मा विदुर कहते हैं श्लोक में कि सबसे पहले कृष्ण विमुख। अब देखिए इस श्लोक में वो भगवान श्री कृष्ण के दो नाम यहां पर उल्लेख कर रहे हैं, एक तो कृष्ण और जनार्दन। तो सबसे पहले कहते हैं कि कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या है, सर्व आकर्षति। तो सर्व आकर्षक कृष्ण को हम जीव विमुख होकर छोड़े, तो यह समझ में आता है कि हमारी भगवान बनने की इच्छा कितनी तीव्र थी। इसलिए महात्मा विदुर कहते हैं कि सर्व आकर्षक कृष्ण को छोड़ा हमने, कोई साधारण वस्तु को नहीं छोड़ी हमने। इसलिए बड़े बड़े वैरागी हुए होंगे, बड़े बड़े त्यागी हुए होंगे, परंतु हमसे बड़ा त्यागी कोई नहीं। क्योंकि जो सबसे बहुमूल्य, सबसे आकर्षक व्यक्ति को हमने त्याग दिया, जो सबसे आनंदमय स्थान आध्यात्मिक संसार को हम छोड़ सकते हैं, तो हम किसी को भी छोड़ सकते हैं। एक बार एक भक्त ये प्रश्न पूछ रहे थे हमसे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भक्त 10 साल 15 साल भक्ति में है फिर उसके बाद भक्ति छोड़ देता है। तो मैंने कहा अरे हम सब आध्यात्मिक संसार छोड़ के आए, ये 10 साल की भक्ति क्या है, 10 साल इस्कॉन में आने के बाद कोई व्यक्ति विमुख हो गया। जनस्य इस्कॉन विमुखस्य दैवात। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे डोंट बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी पीपल विल कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, डोंट बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी पीपल विल लीव कृष्ण कॉन्शियसनेस, बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी पीपल विल स्टे इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। बहुत बड़ा आश्चर्य है ये। तो इस दशा के बाद महात्मा विदुर कहते हैं कि संसार में हम आ गए, ये संसार भी भगवान ने ही बनाया हमारे लिए। हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं थी कि हम ये संसार बना सके। हम भगवान बनने आए थे तो भगवान कहते ठीक है भाई तुम अब सब कुछ तुम ही उत्पादन करो, तुम भगवान बनने जा रहे हो ना, तुम ही सब कुछ उत्पादन करो। नहीं, भगवान ने सब कुछ तत्व हमें दिए यहां पर, जैसे यहां पर प्रभुपाद कहते हैं नित्य बद्ध जीवों में प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने की मानसिकता का विकास हो सकता है, अतः उन्हें दो प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक संसार का प्राकट्य होता है। ये देखिए दो प्रकार की सुविधा प्रभुपाद कहते हैं। पहली सुविधा के अनुसार बद्ध जीव स्वेच्छा से विश्व पर अधिकार जमा सकता है और दूसरी सुविधा के अनुसार वह भगवान के धाम को वापस जा सकता है। तो यह भी भगवान के द्वारा सुविधा प्रदान की गई है कि हमें यहां पर भगवान बनने का अवसर हम सबको। अभी देखिए सभी जितने जीव हैं सभी भगवान बनना चाहते हैं, एक ही पोस्ट है और कितने जीव बनना लेना चाहते हैं वो पोस्ट, अनगिनत जीव भगवान बनने का पोस्ट। इसलिए इतना सारा सब द्वंद्व चल रहा है देशों के बीच में, समाजों के बीच में, परिवारों के बीच में। क्या है ये सब, एक पोस्ट और उस पोस्ट को सभी हासिल करना चाहते हैं यहां पर स्वामित्व प्रकृति के ऊपर। इसलिए वो सही तरीके से स्वामित्व तो मिलता नहीं। तो महात्मा विदुर कहते हैं अधर्म। वो करता क्या है फिर यहां पर आकर? जीव अधर्म, अधर्म में लगता है, क्योंकि धर्म के द्वारा तो ये समझ में आ जाएगा कि मैं स्वामी हुई नहीं। यदि धार्मिक होगा तो समझ में आ जाएगा कि स्वामित्व तो मैं जमा ही नहीं सकता, तो अधार्मिक होना होगा उसे। इसलिए वो कहते हैं कि कृष्ण विमुख होने के पश्चात इस भौतिक संसार में अधार्मिक होना पड़ता है बद्ध जीव को, और फिर अधार्मिक होने के वजह से उसका अगला स्तर या अगला स्टेप क्या होता है? सुदुखितस्य जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य। केवल दुखितस्य नहीं, सुदुखितस्य। जैसे बोलते ना, किसी का पुत्र है किसी का सुपुत्र है, अर्थात बहुत अच्छा है, कोई शीलवान है कोई सुशीलवान है, तो कोई दुख में है कोई सुदुख में। ये सुदुख कोई अच्छी बात नहीं है, नहीं तो हमें लगता होगा मैं सुदुख में हूं, तुम तो केवल दुख में हो, मैं तो सुदुख में हूं। ये दुख की सबसे गहरी स्थिति है सुदुखितस्य। अब ये महात्मा विदुर द्वापर युग में बोल रहे हैं, अब तक ये कलयुग में यदि ये श्लोक बोला गया होता तो सु 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 दुखितस्य बोला जाता था। आजकल की स्थिति को देखते हुए तो अब ये प्रश्न है कि भागवत ये सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे देता है। तो इसी श्लोक में महात्मा विदुर हमारी स्थिति बताए पहले दो वाक्यों में, और अब अगले दो वाक्यों में बता रहे हैं कि हम कैसे इस सुदुखितस्य से सुसुखितस्य बन सकते हैं। वो कहते हैं अनुग्रहायार ही चरंति नूनम। जैसे कि हम लोग विचरण कर रहे हैं बद्ध जीव, वैसे ही भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं हमारे साथ विचरण करने के लिए। चरंति, चरंति का अर्थ है विचरण करना। तो हमारे ही मध्य में भगवान अपने गुप्तचर भेजते हैं, जैसे शत्रु पक्ष भेजते हैं ना अपना गुप्तचर, स्पाई जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो भगवान अपने स्पाइज भेजते हैं। कौन है ये स्पाइज? जैसे श्रील प्रभुपाद, ये या इनको ये कहेंगे एम्बेसडर फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये लोग आते हैं और हमारी बद्ध स्थिति को देखते हुए ये करते क्या है? अनुग्रह। सबसे पहले इनका अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। और भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। अब यहां पर महात्मा विदुर भगवान कृष्ण को कृष्ण नहीं बोल रहे, जनार्दन बोल रहे। क्यों? क्योंकि हमारे उद्धार के लिए उनको अब सर्व आकर्षक अपना पद छोड़कर जनार्दन का पद लेना होगा। जनार्दन का अर्थ क्या होता है? जन का जो आर्दन है वो दूर करने वाले, अर्थात हम जो जन हैं हमारे दुख को दूर करने वाले हैं जनार्दन। इसलिए हम जब कृष्ण भक्ति में आते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान श्री कृष्ण के जो आकर्षक रूप हैं, उनकी जो आकर्षक लीलाएं हैं, वो हमें इतना ज्यादा प्रेरित नहीं करती, परंतु भगवान का जो कृपा स्वरूप है वो प्रेरित करता है। जैसे कि यदि एक उदाहरण से इसे हम समझें, एक डॉक्टर है तो डॉक्टर अपने घर में परिवार के साथ आनंद भोगता है, परंतु जब वो किसी मरीज को देखने जाता है तब वो उसकी पीड़ा दूर करने के लिए वहां पर गया है, हॉस्पिटल में कहीं पर भी। तो अब मरीज डॉक्टर से सबसे ज्यादा प्रेरित कब होता है? जब डॉक्टर घर में होता है तब। घर में मानो डॉक्टर बर्थडे पार्टी मना रहा है अपने बेटे की, तो मरीज क्या डॉक्टर की बर्थडे पार्टी से ज्यादा प्रेरित होगा या डॉक्टर जब वो सब कुछ लगा लुगो के आता है ड्यूटी पे, मरीज ज्यादा प्रेरित किससे होगा? डॉक्टर की कौन से रूप से? उसको जो ठीक करने वाला रूप है। तो वैसे ही यदि भगवान की तुलना उस विशेषज्ञ से की जाए तो गोलोक वृंदावन धाम में तो भगवान ये सब लीलाएं कर रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं वहां पर गोपों के साथ, गोपियों के साथ, परंतु हम जो मरीज यहां पर हैं इस अस्पताल में, कोई ऐसे लटक रहा है, कोई वैसे लटक रहा है, यहां वहां से सब हालत खराब है पूरी, कोई उल्टी कर रहा है, कोई दस्त लगे हुए हैं, कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, कोई दर्द में करा रहा है, हमको जब बताया जाए कि भगवान श्री कृष्ण अभी रासलीला कर रहे हैं गोपियों के साथ, लेकिन मेरी हालत देखो, ये मेरी जो लीला, जो सब कुछ पीला हो रहा है मेरा, तो इसलिए वो कृष्ण फिर जनार्दन का रूप लेते हैं। तो इसलिए महात्मा विदुर इस श्लोक में कहते हैं कि हम जब छोड़े तो हम छोड़े कृष्ण को, और यहां पर हमको जब वापस जाना है तो वही कृष्ण जनार्दन के रूप में, जनार्दनस्य, उस रूप में आते हैं, वो डॉक्टर जो हमारा उपचार करेगा, हमारी बीमारी को ठीक करेगा। इसलिए देखिए इस भौतिक संसार में जितने भी सारे अलग अलग धर्म हुए हैं, भगवान की परिभाषा क्या दी है उन्होंने, जैसे कि अल्लाह, अल्लाह का अर्थ क्या है? ऑलमाइटी, शक्तिशाली जो है। जैसे कि कई हिंदू भी जो हैं वो भगवान की परिभाषा कैसे देते हैं कि जो सृष्टि करता है, इस सृष्टि के जो सृष्टि करता है, जो नियंता है, विष्णु जो सर्वव्यापी हैं। तो इस प्रकार से भगवान की परिभाषा इस भौतिक संसार में हम देते हैं हर समय हमारे संबंध में, है कि नहीं? भगवान की परिभाषा हमारे संबंध में ही रहती है, वो क्रिएटर है। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर हूं। ये क्रिएट क्यों करना पड़ा उन्हें? क्योंकि मैंने इच्छा की यहां पर आने की। अर्थात यदि हम भगवान की ये सारी परिभाषाएं निकाल दें कि भगवान क्रिएटर नहीं, नियंता नहीं, मेंटेनर नहीं, डिस्ट्रॉयर नहीं, ये सब कुछ नहीं, अर्थात मुझसे कोई संबंध नहीं, फिर ये मैं यहां पर होने के वजह से, जैसे कैदी जेल में है तो जेल में होने के वजह से पुलिस डिपार्टमेंट का कनेक्शन हर प्रकार से कैदी से होता है ना, उसको कब खिलाना है, उसको क्या पहनाना है, कहां उसको बंदी बना के रखना है, किसको ड्यूटी पे लगाना है, अलग अलग संतरियों को कैसे लगाना है, ये सब कुछ पूरा जो पुलिस डिपार्टमेंट चल रहा है, वो पूरा जो जेल डिपार्टमेंट चल रहा है, उसका एकमेव रिश्ता सबका किसके साथ है? वो अंदर जो बैठा है ना कैदी, उसके साथ। यदि अंदर कैदी नहीं होगा तो ये लोग क्या बंदूक लेके किसके लिए घूमते रहेंगे यहां वहां? अर्थात समझने की बात यह है कि इस भौतिक संसार में हमने जो भगवान की परिभाषाएं दी हैं, वो सारी परिभाषाएं हमने हमारे संबंध में दी है, क्रिएटर, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीशियंट, ये सब जो नाम होते हैं ना भगवान की, पद जो हमने दिए हैं, ये सब मेरे संबंध में, यदि मुझे निकाल दिया जाए, मुझे उस पिक्चर से बाहर निकाल दिया जाए, तब भगवान की परिभाषा क्या है? रसो वैसह कृष्ण, जो केवल गोलोक वृंदावन में अपने आनंद भोगते हैं, और वो श्री चैतन्य महाप्रभु हमको लाके दिए, ये परिभाषा भगवान की। नहीं तो तब तक हमारा ये स्वार्थ बना रहता है कि भगवान है मेरे उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए। मैं यहां पर दुखी हूं, मैं सुदुखितस्य, तो मेरे उद्धार के लिए भगवान अवतरित होते हैं, नरसिंह भगवान, वराह देव, वामन देव, ये अलग अलग अवतार, इतने सारे मंदिर तीर्थ स्थान, ये सब कुछ मेरे उद्धार के लिए, इतने सारे ग्रंथ मेरे उद्धार के लिए। तो यदि ये जो मेरा निकाल दिया जाए, तब फिर भगवान कौन है? राधा रमण, राधा गोपीनाथ, वो है भगवान, जो हर समय राधा रानी में रमण करते हैं, जो श्रीमती राधा रानी के साथ विलास करते हैं। और हमें उस स्थान तक पहुंचना है, वो है हमारा गंतव्य स्थान, परंतु बीच में हमें ये सारे जो अवरोध हैं, इन अवरोधों से पार होते हुए वहां तक पहुंचना है। तो इसलिए इस श्लोक में महात्मा विदुर ने कहा कि कृष्ण को हमने छोड़ा, परंतु यहां पर सर्वप्रथम साक्षात्कार हमें लेना है जनार्दन का, और फिर अंततः गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का। अब ये प्रश्न यदि पूछा जाए कि भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे है, अब कितने सारे प्रश्न हो सकते हैं कि सेंसेक्स का भाव क्या है, प्रश्न है स्टॉक मार्केट में क्या भाव चल रहा है। तो यदि कोई आज की क्लास में आए और क्लास के बाद ये अध्याय का शीर्षक यहां पढ़े, भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है, तो माइक लेके तो बताओ सेंसेक्स का भाव क्या होगा कल, हाँ ये जो हम स्टॉक मार्केट में पैसे कितने बढ़ोतरी होगी उसमें, कितने और मिलेंगे, इन सब का उत्तर भागवत में है। कैसे? इन सब को छोड़ छाड़ के हमें भगवत धाम जाना है। जब तक हम भगवान को शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमें यदि कोई ठीक ठीक भी उत्तर दे दे कि हां, जैसे कि श्रील प्रभुपाद अमेरिका में, उनको एक ऐसे कार्यक्रम, ऐसे जगह पर ले गए कार्यक्रम के लिए जो केवल प्रभुपाद जा सकते थे। ये जगह थी द मॉर्निंग स्टार रैंच, द नेकेड हिप्पी कम्यून। वहां पर ये हिप्पी नग्न निर्वस्त्र अवस्था में किसी पहाड़ी पे, जितने भी सारे हिप्पी थे किसी ने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था, और प्रभुपाद वहां पर उनको कुछ कपड़े पहने हुए हिप्पी ले गए प्रोग्राम के लिए। प्रभुपाद को पता नहीं था, शुरुआत में जो भी कुछ कार्यक्रम के लिए प्रभुपाद को कहते प्रभुपाद चले जाते, तो प्रभुपाद वहां पर गए तो वहां पर देखे सब उस अवस्था में केवल चारों दिशाओं में उनके वस्त्र, अर्थात कोई वस्त्र नहीं, केवल दिशाओं से वो सुसज्जित। तो एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद ने देखा, वो गार्डनिंग कर रहा था, कुछ आलू लगा रहा था, आलू वहां पर उगा रहा था। तो प्रभुपाद ने उसको पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, प्रश्न पूछा, तुम क्या कर रहे हो। तो प्रभुपाद के पास देखते हो ना, आलू लगा रहा हूं। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ, तुम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो। ये प्रश्न आज तक इस व्यक्ति को किसी ने नहीं पूछा था। अब प्रभुपाद ने जो प्रश्न पूछा, प्रभुपाद क्या उत्तर चाहते थे उसका, ये कि तुम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो। मैं ये नहीं पूछा तुम अभी क्या कर रहे हो, ये तो मुझे भी दिख रहा है तुम आलू लगा रहे हो। परंतु प्रभुपाद ने वो प्रश्न पूछा ताकि वो किसी आगे वाले जीवन में आलू न बने इस प्रकार से। तो उस कार्यक्रम में एक, आज वो बहुत बड़े हमारे इस्कॉन के सन्यासी भी हैं, वो प्रभुपाद की वाणी सुनने के पश्चात कपड़े पहनकर ज्वाइन किए इस्कॉन को। अब देखिए, भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। प्रहलाद महाराज के जीवन में जो समस्याएं आई और हिरण्यकशिपु के जीवन में जो समस्याएं आई, दोनों का उत्तर दिया किसने? नरसिंह भगवान। भागवत, यदि नरसिंह भगवान की तुलना भागवत से की जाए तो एक नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज की भी समस्या दूर की और हिरण्यकशिपु की भी समस्या दूर की। हिरण्यकशिपु की समस्या क्या थी? कि वो इस भ्रम में था कि मैं विष्णु को मार सकता हूं, वो इस भ्रम में था कि मैं अमर हूं, वो इस भ्रम में था कि मैं ये प्रहलाद का पिता हूं। तो ये सब उसकी जो समस्याएं थी, इन सब समस्याओं का हल नरसिंह भगवान ने किया। अब देखिए, अंतर इतना ही था कि प्रहलाद महाराज ने जो प्रश्न पूछे वो प्रश्न अनुकूल भक्ति के प्रश्न थे, और हिरण्यकशिपु के जो प्रश्न थे वो प्रतिकूल थे। तो कई बार प्रश्नों के अनुसार उत्तर दिया जाता है ना। तो हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान ने उत्तर कैसे दिया? चीर फाड़ कर। वो नरसिंह भगवान का उत्तर हिरण्यकशिपु को था। और प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान ने उत्तर कैसे दिया? अपना वरद हस्त रखकर, वही हाथ हिरण्यकशिपु के पूरे शरीर को फाड़ दिए और वही हाथ प्रहलाद महाराज के मस्तक पर भगवान ने अपना वरद हस्त रखा। तो इससे समझ में आता है कि हिरण्यकशिपु जैसे वृत्ति वाला कोई यदि हो इस भौतिक संसार में, तो उसके भी सारे प्रश्नों के उत्तर भगवान ही देंगे, दूसरी भाषा में। थोड़ी भाषा बदलनी होगी। जैसे कई बार कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है किसी एक भाषा में, तो उस भाषा में उत्तर देना होता है उस व्यक्ति को समझ में आए इसलिए। तो हिरण्यकशिपु इसी भाषा को समझा, प्रहलाद महाराज उनकी भाषा अलग थी, तो भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की भाषा में उनको उत्तर दिए। इसलिए हम क्या सीखते हैं, केवल इस अध्याय के शीर्षक से हम क्या सीखते हैं हमारी साधना भक्ति में? हम ये सीखते हैं कि हमारे भी साधना भक्ति में जो भी समस्याएं आए तो हमें उत्तर कहां ढूंढना है? उत्तर हमें सकाळ, दैनिक जागरण, मुंबई टाइम्स, ये वो येलो पेजेस या टाइम मैगजीन, इंडिया टुडे, इसमें नहीं ढूंढना है। हमको कहाँ ढूंढना है? भागवत में। और भागवत में इन सारे प्रश्नों का उत्तर है। चाहे कोई भी प्रश्न आप लो इस भौतिक संसार का, वो सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत में है। जैसे एक बार एक क्रिश्चियन महिला वो श्रील प्रभुपाद से मिलने आई और उन्होंने श्रील प्रभुपाद से पूछा, एक क्रिश्चियन संत के बारे में उन्होंने पूछा, इज जोन ऑफ आर्क मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवतम? एक क्रिश्चियन संत का नाम जोन ऑफ आर्क, इसने पूछा कि इज जोन ऑफ आर्क मेंशन्ड इन योर श्रीमद् भागवतम? तो प्रभुपाद ने पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट दिस जोन ऑफ आर्क, फर्स्ट यू टेल मी समथिंग अबाउट दिस जोन ऑफ आर्क। तो इस महिला ने कहा, जोन ऑफ आर्क वॉज अ वेरी वेरी ट्रुथफुल सेंट, वेरी ऑनेस्ट, ट्रुथफुल, बहुत ईमानदार और सत्यवादी, और ये सारे गुण बताए। तो प्रभुपाद का उत्तर देखिए, बहुत ही दिलचस्प उत्तर प्रभुपाद ने दिया। प्रभुपाद ने कहा, वेर एवर जोन ऑफ आर्क इज मेंशन्ड, दैट इज श्रीमद् भागवतम। अर्थात श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम केवल 18,012 स्कंद नहीं। भगवान जहां कहीं पर भी अपनी शक्तियों के द्वारा, भागवत है क्या? स्वयं भगवान है। तो क्या भगवान केवल 12 स्कंद में सीमित है? क्या भगवान केवल 18,000 श्लोकों में सीमित है? भगवान तो असीमित है। तो यदि भागवत स्वयं भगवान है, तो स्वयं भगवान तो असीमित है, तो भागवत भी असीमित होना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा, वेर एवर जोन ऑफ आर्क इज मेंशन्ड, दैट इज श्रीमद् भागवत। अर्थात जहां कहीं पर भी हम भगवान की शक्तियों को देख रहे हैं, और वो तो सर्वव्यापी है, चाहे बहिरंगा हो या अंतरंगा हो, सर्वव्यापी है। इसलिए श्रीमद् भागवत सर्वव्यापी है। इसलिए ये जो अध्याय का शीर्षक है, सभी प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भागवत में है। इसलिए हमारी साधना भक्ति में हमें केवल इस अध्याय से सुखदेव गोस्वामी क्या समझा रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी ये समझा रहे हैं कि कुछ भी समस्याएं आ जाए, हमें, हमारी समस्या है कृष्ण से विमुख होने की वजह से, भागवत से विमुख होने की वजह से, हमारी आंखें बंद करने की वजह से, सूर्य की रोशनी है उसके बावजूद हमने अपनी आंखें बंद कर रखी है। तो इन सब समस्याओं का हल हम यदि फिर से उन्मुख हो भगवान के, हमारी आंखें खोलें, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया, ये जो ज्ञान का अंजन गुरुदेव देते हैं, इसके द्वारा हम फिर से उन्मुख हो सकते हैं भगवान के, और फिर हम धीरे धीरे भगवान का वो जो जनार्दन स्वरूप का साक्षात्कार करते हुए, हम भगवान श्री कृष्ण का जो सर्व आकर्षक स्वरूप है, जो कि हमसे वास्तविक रूप में हम उनसे संबंधित हैं, कैसे? शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा। और इसलिए उस स्थिति में जब हम आएंगे, तब जाकर, जैसे यहां पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो दो प्रयोजन है इस भौतिक संसार का, एक प्रयोजन जिसमें तो हम फेल हो रहे हैं हर बार, कौन सा प्रयोजन? हमें भगवान बनाने का जो प्रयोजन, वो भ्रम है सबसे बड़ा, माया का प्रलोभन सबसे बड़ा, और उससे हमें माया से विमुख होकर जब माया से विमुख होंगे तब जाकर हमारा जो सुसुखितस्य वो जो स्तर है, वो जो कार्यक्रम है, वो शुरू होगा। और दूसरा जो प्रयोजन यहां पर श्रील प्रभुपाद कहे हैं कि इतने सारे ग्रंथ, जैसे सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनाए, परीक्षित महाराज के जो प्रश्न, अर्जुन के जो प्रश्न, ये सब जो ग्रंथ उत्पन्न हुए इनके प्रश्नों के द्वारा, ये हम सब के प्रश्नों के उत्तर दिलाने के लिए भगवद गीता और भागवत जैसे ग्रंथों का उत्पादन इन्होंने किया भगवान के श्रीमुख द्वारा। और वही एकमेव उपाय है, हम वही एकमेव उत्तर है हमारे सारे प्रश्नों का। और जो मुख्य प्रश्न हमने लिया, मैं कैसे भगवान बन सकता हूं, उस सब प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत में है। उत्तर सबसे पहले यह है कि भगवान तो हम कदापि नहीं बन सकते। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, बता दिया है नित्य वो ईश्वर हैं और नित्य हम दास हैं। और फिर इन महाजनों के पदचिन्हों पर चलते हुए, महात्मा विदुर, मैत्रेय ऋषि, सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्मा जी, इनके पदचिन्हों पर चलते हुए हमें हमारी साधना भक्ति की समस्याओं या प्रश्नों का उत्तर भागवत से लेना है, उसे अपने जीवन में अपनाना है और अपना जीवन सफल बनाना है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का?
थैंक यू ब्रोजी। प्रश्न ये था ब्रोजी, आपने जैसे मेंशन किया क्लास में कि हम भगवान को क्यों मानते हैं, भगवान की व्याख्या क्या है कि वो हमारे उद्धारक है या उन्होंने हमारे ऊपर जो कृपा की है उसके लिए, यानी जो कृतज्ञता का भाव जब आता है तब हम भक्ति में शुरुआत करते हैं। फिर अगर लेकिन जब कोई उस स्तर पर होता है कि जो ये सब परिभाषा को छोड़ देता है, केवल भगवान के प्रति आकर्षित होता है, तो उस समय कृतज्ञता का जो एलिमेंट होता है वो कैसे हम समझ पाए, क्योंकि हमने हमारे भी जो भी बड़े बड़े आचार्य है उन्होंने जो भी भजन लिखे हैं उनका जो अगर हम लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें बार बार वो कृतज्ञता की भावना का मेंशन करते हैं, लेकिन अगर ये परिभाषा अगर हम पूरा निकाल दें तो फिर कृतज्ञता का स्थान क्या होता है उस स्थिति में, कैसे उसको फिर हम समझ पाएंगे गुरु जी?
उसको इसी प्रकार से समझ पाएंगे कि मानो वही डॉक्टर का उदाहरण हम लें, वो डॉक्टर ने अभी मरीज को ठीक कर दिया। अब मरीज को ठीक करने के पश्चात मानो कि वो डॉक्टर अब वो बेरोजगार है, वो इतना निर्धन बेरोजगार, तो डॉक्टर उसे अपने ही क्लिनिक में कंपाउंडर बनाता है। तो अब जो कृतज्ञता का भाव इस स्वस्थ मरीज को होगा वो दूसरा होगा। पहले जो कृतज्ञता का भाव क्या था कि मेरी पीड़ा से मुझे मुक्ति कराओ, तो हम बद्ध अवस्था में जो कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं वो जैसे एक मरीज डॉक्टर के प्रति पीड़ित अवस्था में व्यक्त करता है वैसे। और बड़े बड़े आचार्य जो व्यक्त करते हैं वो उनके कृतज्ञता का भाव क्या है कि वो जो आस्वादन कर रहे हैं भगवान की लीलाओं का, आत्मा के स्तर पर, स्वस्थ आत्मा के स्तर पर, बिना बीमारी के, वो उनके कृतज्ञता का भाव। तो ये दोनों में अंतर ये है। इसलिए उस श्लोक में महात्मा विदुर भगवान का ये जो दो नाम है ये बोल रहे हैं ना, कृष्ण और जनार्दन। तो शुद्ध भक्त जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि ये जो ये सारे नाम हैं, परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, ये सब नाम गोलोक वृंदावन में कोई नहीं पुकारता भगवान को, परमात्मा है ही नहीं परमात्मा वहां पर। ये केवल हमारे लिए यहां पर ये विस्तारित होते हैं हमारे उद्धार के लिए, परंतु उनका पूर्ण साक्षात्कार करने के बाद वो श्लोक है, वदन्ति तत् तत्वविदस् तत्वम यद् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। अंततः उन कृष्ण का साक्षात्कार वो सर्वोत्तम है। और कोई प्रश्न?
हमारे मन में ऐसा होती है कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति होता है,
आप माइक हाथ में लिए हैं,
एक दृष्टिहीन व्यक्ति होता है कि जन्म से भी उसको दृष्टि नहीं रहती है, जन्म से दृष्टिहीन होता है, तो हम जानते हैं कि उसके मन में क्या भावना होती होगी। हम दृष्टि होते हुए भी वो पथ पे हम नहीं चल सकते, लेकिन उसके अंदर जो भावना है आध्यात्मिक जगत के प्रति और भौतिक जगत में प्रति, तो हम जानने का ये प्रयास करते हैं कि उसकी क्या भावनाएं होगी इन दोनों जगत के प्रति।
जो जन्म से अंधा है उसकी क्या भावना होगी किसके प्रति?
ये आध्यात्मिक और भौतिक जगत, वो तो देख नहीं सकता।
नहीं नहीं, अंधे हम सब हैं।
अच्छा,
ये मत समझिए कि हमारी जो आंखें हैं, जो हम देख रहे हैं सब कुछ, हम देख रहे हैं। पश्यन अपि न पश्यति, पश्यन अपि न पश्यति का अर्थ है देखते हुए भी हम अंधे हैं। जैसे यहां पर भगवान सामने हैं, हमारी आंखें क्या देखती हैं? ये कोई धातु है, मेटल, हमारी आंखें केवल मेटल को देख रही हैं। तो इसलिए प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न, ब्रह्मा जी ने कहा है कि जब ये प्रेम का अंजन आएगा इन आंखों के ऊपर, कृष्ण प्रेम का अंजन आएगा, तब जाकर हम आध्यात्मिक संसार को देख पाएंगे। तो जब तक वो प्रेम का अंजन नहीं आ रहा हमारी दृष्टि के ऊपर, तब तक सभी अंधे हैं। चाहे कोई शारीरिक रूप से अंधा हो या कोई शारीरिक रूप से अंधा न हो, ये हम आध्यात्मिक संसार के बारे में जानकारी आंखों से नहीं लेते, यहां से शास्त्र चक्षु कानों से। तो हमें इसलिए तो कहा गया है कि भगवान ने अपने धाम का वर्णन, ये जो श्रीमद् भागवत है, ये स्वयं भगवान है, अर्थात भगवान की वाणी है। तो भगवान की वाणी के द्वारा हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान स्वयं भी सामने आ जाए तो ये आंखें भगवान की प्रशंसा नहीं कर पाएंगी, जब तक कि ये कानों ने भगवान के गुण नहीं सुने।
भगवान बनने की इच्छा थी उसके, तो भौतिक संसार में आने के भगवान ने बना दिया है भौतिक संसार उसके लिए, तो इधर तो दुख ही दुख है। वो भगवान को तो पता ही था, मेरे मन में आप बता रहे तो मेरे मन में विचार आए, क्या भगवान ने ये भौतिक संसार यानी कि बनने के लिए या पनिशमेंट है, तो भगवान ने फिर उधर ही तो उसको, जैसे कि भौतिक संसार में हम उदाहरण देते कि जेल है, तो वैसे आध्यात्मिक जगत में भगवान ने उसको पनिशमेंट दी हो गया और यानी कि देते थे, तो तुरंत उधर ही वो सुधरता था और भगवान की शरण ग्रहण करता था। तो इतना सारा भौतिक संसार में
वही एक कोने में क्यों नहीं बनाए कोने में?
तो भगवान ने, भगवान को ये तो पता होगा कि एक बार वो भौतिक संसार में जाएगा तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएगा, तो पता नहीं कब मेरे पास आएगा, तो मेरी जिज्ञासा है।
देखिए, ये पूरी जो सृष्टि है ये एक दृष्टिकोण से भागवत में कहा गया है कि जो ब्रह्म ज्योति है आध्यात्मिक, उसी में स्थित है, स्पिरिचुअल स्काई है, और उसमें ये कोना है, ये आप जो बोल रहे हैं ना वही है, ये महत्वत्व, हम जो प्रकृति में हैं, ये आध्यात्मिक संसार का एक, जो वो बोलते ना पिछवाड़ा, वहां पर जहां पर और कुछ नहीं हो सकता तो वहां पर ये बनाया, ठीक है जाओ तुम वहां जाओ। तो ये उसी प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। और एक और कारण ये है कि हम उस इच्छा के साथ आध्यात्मिक संसार में रहने के योग्य ही नहीं, क्योंकि भगवान की सारी जो लीलाएं चल रही हैं, जो गोपों के साथ, गोपियों के साथ, माता यशोदा, नंद महाराज इनके साथ, उसके बीच में यदि हम चले जाएं ये इच्छा लेकर, तो वो भगवान की जो इतनी शुद्ध मधुर लीलाएं हैं उसमें पूरा हम रसाभास कर देंगे, तो वो हमारे लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि हमारी इच्छा क्या है, सब हमको देखे, कैमरा मेरे ऊपर होना चाहिए, लेकिन वहां पर हमको तो कोई देखने नहीं वाला, सब तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो हमारे लिए वो दुखदायी होगा। और हम उस इच्छा को लेते हुए आध्यात्मिक संसार में यदि रहते भी, किसी ना कि किधर भी रहते आध्यात्मिक संसार में, ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक संसार केवल नंद भवन और उसके आसपास ही सब आध्यात्मिक संसार है, और बाकी हम किधर भी कोने में अपना बिस्तर लगा के सो सकते हैं, वो आध्यात्मिक संसार नहीं, किसी को पता भी नहीं लगेगा मच्छरदानी में कौन है अंदर। एक तो मच्छरदानी की जरूरत ही नहीं उधर। तो हम भगवान की लीला का मजा किरकिरा करेंगे, और हम जो इच्छा पैदा किए हैं वो भी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए एक साधारण सा प्रश्न कि जेल वो क्यों बनाया जाता है, अलग से इतना बड़ा जेल क्यों बनाया जाए, तिहार जेल इतना बड़ा जेल क्यों बनाया गया, हालांकि वो है उसी शहर में, परंतु वो अलग से उसका सब कुछ डिपार्टमेंट होता है, उसकी बड़ी बड़ी दीवारें और सब कुछ अलग से क्यों, ताकि जो सरकार को मानने वाली जनता है, कानून को मानने वाली जनता है, वो जनता में ये लोग आकर उपद्रव न करें, और ये लोग जहां पर बंद हैं, बंदी जो जेल में हैं, वहां पर ये रहते हुए पश्चाताप कर अपनी गलती को सुधारें, ताकि वो भी इनसे प्रभावित ना हो, जो बाहर की जनता है वो भी इनसे प्रभावित ना हो, और ये यदि सुधरते हैं तो वहां जाने के योग्य होते हैं। तो भगवान ने ये कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसी जगह ढूंढी जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता या वहां से कोई निकल नहीं सकता, नहीं, ये सब कुछ भगवान की सृष्टि है, सब कुछ ब्रह्म ज्योति में ही स्थित है। ये जो सूर्य की रोशनी है, ये सूर्य की रोशनी आ कहां से रही, ब्रह्म ज्योति से आ रही, एक इतना सा कण ब्रह्म ज्योति ये सूर्य है। तो ये पूरा संसार स्पिरिचुअल स्काई में स्थित है। स्पिरिचुअल स्काई का अर्थ क्या है, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति का अर्थ क्या है, भगवान का संसार, उसमें ये महत्तत्व और ये प्रधान और प्रकृति, ये सब कुछ इसमें बताया गया। तो भगवान ने हमारे उद्धार का अरेंजमेंट उन्हीं की सृष्टि में किया है, आध्यात्मिक सृष्टि में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।